ओम शांति। भट्टी में कौन कौन आए? भट्टी वाले हाथ उठाइए। वाह, सारे भट्टी वाले खाना खा के पहुंच भी गए। मैं सोचा था सेवादार ही आएंगे। पहला ही दिन है ना, खूब आनंद लेना, ठंडी हवाएं, सुखद वाइब्रेशंस, योग युक्त होने का स्थान, इसका पूरा फायदा उठाना है। कौन उठा सकता है फायदा पूरा? नहीं, कौन? क्वालिटी बताओ। जो पूरी भट्टी के समय अपने को जितना हो अंतर्मुखी रखते हुए, केवल चुप नहीं रहना, कुछ और भी तो करना। चुप रह के तो बोर भी हो जाएंगे आप। अंतर्मुखी रहकर अपने से बातें करना, स्वचिंतन, अच्छे अभ्यास करना सारा दिन। कई लोग मौन रख लेते हैं केवल, अकेले मौन से कुछ होता नहीं। मौन रखकर हम अभ्यास क्या करते हैं, महत्व उसका होता है। मौन का फायदा ये कि मौन रखने से वो अभ्यास बहुत अच्छे हो जाते हैं, टाइम इधर उधर नहीं जाता। तो आप सभी का स्वागत है ठंडी हवाओं में। मजा आया आके भाइयों को? नहीं, ताली की जरूरत नहीं। वैसे अब भरपूर होके जाना और कुछ सुंदर प्लानिंग करके भी जाना। कल की मुरली पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संडे 18 जनवरी की मुरली, बाबा को सबका प्यार पहुंच रहा था नीचे से, फट से पहुंचता है हमारा थोड़ा सा भी प्यार, देर नहीं लगती। और उस प्यार का रिटर्न वो भी बहुत जल्दी देता है हमें। दो बातें बहुत अच्छी अभ्यास की कही, पहले इन पे चर्चा करेंगे और फिर स्वमान की बात थी स्लोगन में बहुत अच्छी, थोड़ी उस पे चर्चा करेंगे। स्वमान में स्थित रहेंगे तो क्या होगा? वाह, आपको तो सबको याद है, माना बहुत प्रिय चीज है आपकी ये। स्वमान में रहेंगे तो सर्व शक्तियां ऑर्डर में चलेंगी। गहरी बात है, छोटी बात नहीं। अभ्यास थे अशरीरी होने का और फरिश्ते स्वरूप का। बहुत अच्छा अभ्यास करो ताकि विनाश काल में क्या होगा? छोटा थोड़ा ही अविनाश कि रात को सोएंगे सवेरे नहीं उठेंगे, हो गया विनाश। हाहाकार हो जाएगा। बाबा ने कहा बात मत पूछो क्या क्या हो जाएगा, देख भी नहीं सकेंगे, जीना तो मुश्किल होगा ही। ऐसे में अगर अशरीरी हो जाएंगे तुरंत या फरिश्ता बन जाएंगे तो उन चीजों का प्रभाव नहीं होगा, निर्भयता रहेगी, साक्षी भाव आ जाएगा। साक्षी भाव लाना बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो प्रश्न उठेगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा है? बाबा मदद करेगा तब? बोलो किसको उत्तर आता है? नहीं है आपके पास उत्तर। बाबा ने दो बातें कही हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नियम नहीं है कि परीक्षाओं के समय टीचर मदद करे। थोड़ा बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं और बच्चे टीचर कहेगा लिखो, मैं लिखा देता हूं उत्तर। नकल वकल करना अलग चीज, लेकिन मदद करना नियम तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा तब बाबा साक्षी होकर देखेंगे कौन कितने पानी में है। रजाई देनी है, बड़ा पद देना है, तो बड़ी परीक्षा भी लेगा या नहीं। यहाँ लौकिक में भी देखो, वो भाई बहने जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं, जितना बड़ा पद देना होता है उतना ही भारी कंपटीशन होता है, होता है या नहीं। आईएएस का देना है, मेडिकल में जाना है, आईआईटी में जाना है, भारी क्वेश्चंस आएंगे, ताकि योग्य बच्चे ही वहां पहुंच सकें। ऐसे ही योग्य आत्माओं को तख्त मिले, तो योग्य आत्माओं का चुनाव हो जाएगा। बाबा ने कहा अंत में, जब रिजल्ट आउट होगी फिर हाहाकार हो जाएगा, बात मत पूछो। और मदद भी करेगा, मदद करेगा भी। अब दोनों का अंतर आप देख लेना, मदद उन्हें करेगा जिन्होंने बाबा के कार्यों में सच्चे दिल से मदद की है, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का बहुत पालन करके उसके दिल को जीत लिया है, उनके याद करते ही वो आ जाएगा, देर नहीं लगेगी, याद करते ही आ जाएगा। और उसकी मदद और कुछ नहीं, आना ही उसकी मदद होगी। बाबा दिखने लगा सामने, फिर और कुछ दिखाई नहीं देगा। पीछे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, कई लोगों ने समझा होगा, अंत में तुमसे लोग बहुत डरेंगे। अब जब ये लाइन पढ़ी गई, सब सोचने लगे क्यों डरेंगे, हम तो प्यार देते हैं सबको। क्या कहा था, याद है किसी को? ऐसे वैसे गंदे लोग तुम्हारे सामने आएंगे तो बाबा क्या करेगा, तुम्हारा महाकाली रूप दिखाएगा, और डर के ऐसे भागेंगे, सोना चांदी जो लूट के लाए वो भी छोड़ के जाएंगे, ये भी तुम्हारा। बहुत हो गए, भिन्न भिन्न। एक माता ने मुझे सुना है, उसको सात कन्याएं सातों को लेके सेंटर जा रही थी, थोड़ा सवेरे का समय था, जल्दी जा रही थी। गुंडे तो तलाश में रहते, इनके पास माल होगा। उनको दिखा शेर का खुला हुआ मुंह, भाग गए, ठहरे ही नहीं वहां। ये सब भी खेल बहुत चलेगा। जिस दिन बाबा अपना वो काम शुरू कर देगा, क्या है बाबा के पास जो हमें नहीं देता कभी, चाबी है एक, ये भी नहीं बताता कहां बनाई है। अब रोड में बनती तो हम भी बनवा लेते। दिव्य दृष्टि की चाबी, बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी तुम्हें नहीं देता, पर बदले में राजा ही दे देता हूं, तो बराबर बैलेंस कर देता ना। जिस दिन बाबा ने दिव्य दृष्टि की चाबी लगानी शुरू कर दी, प्रत्यक्षता जय जयकार साक्षात्कार का खेल शुरू हो जाएगा। पर होगा किनके द्वारा, बाबा तो चाबी लगाएगा, करने वाले तो हम होंगे ना नीचे, जिन्होंने बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। इसके लिए ये दोनों अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूं और फरिश्ता हूं। पीछे बाबा ने ड्रिल भी कराई थी। यहां मधुबन में अगले तीनों दिन यहां बैठ के भी, क्लास सुनते हुए भी, खाते घूमते, बहुत सुंदर स्थान है ये, बहुत सुंदर कहें या और कुछ सब जोड़े, संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान। भाई ये रूप से तो अच्छा है ही, लेकिन वाइब्रेशंस जैसे यहां हैं, शायद चारों युगों में सारे संसार के किसी भी जगह पर ऐसे नहीं हो सकते, जानते हैं ना सब इसको। तो चलते फिरते मैं आत्मा शरीर में बैठकर इसको चला रही हूं। दो अभ्यास बताता हूं, ज्यादा नहीं, बस तीन बता देता हूं, तीन दिन के। पहले दिन ये अभ्यास कर लेना, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर रथ, यहां बैठकर भ्रकुटी में बैठकर मैं इसको चला रही हूं। अलग है दोनों, मैं मालिक, ये मेरा रथ, बस ये फील करना है, इसको कोई रटना नहीं है। हर घंटे में एक बार भी ये फीलिंग हो जाए तो बहुत काफी होता है। दूसरे दिन का मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूं, बस। क्लास सुनेंगे आप यहां, टीचर सामने होंगे, मैं आत्मा इन्हें आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा क्लास सुन रही हूं, बस इतना ही अभ्यास। तीसरे दिन मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये स्वरूप हमारा बहुत सुंदर है, इसको विकसित करना है, इसको डेवलप करना है, इसको बढ़ाना है। सभी ध्यान से सुन लेंगे, मैं पवित्रता का बहुत तेजस्वी फरिश्ता हूं। तीसरे दिन का अभ्यास, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, रंग बिरंगी। दो चार बार ये स्वरूप बना लेना, बाकी सारे दिन में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, इसको याद कर। और इन किरणों से मेरे चारों ओर आभा मंडल बन गया है, बहुत सुंदर ओरा। बीच बीच में देखेंगे अपने, ये अभ्यास कोई सारा दिन आप कर सके वो संभव नहीं होगा, लेकिन दो तीन बार भी कर लिए तो काफी। फिर याद रखना बस सिंपल, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। एक बहुत अच्छा अभ्यास इसमें, जो आप में से बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है? उम्मीद तो यही थी कि सब सोचेंगे कैसे हाथ उठाएं। जो अच्छा योग करते हैं वो हाथ उठाओ, ठीक है। जो भविष्य में बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना चाहते हैं, वो एक अभ्यास करना, हाँ ठीक है, बस अब हाथ नहीं उठवाऊंगा, वो एक अभ्यास करना, ध्यान से सुन लेना। रोज एक बार भी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, सवेरे या शाम। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में हूं, प्रकृति का मालिक हूं, बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं। देखना, बहुत तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, सारा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। कुछ देर बस, आधा मिनट से एक मिनट, और फिर नीचे खड़े हजारों लोग मेरे स्वरूप को ऊपर देख रहे हैं, कौन फरिश्ता प्रकट हुआ है ऊपर देख रहे हैं, बहुत तेजस्वी गोल्डन लाइट फैली हुई है, इससे तो इसकी आंखों से भ्रकुटी से लाइट फैल रही है। ये अभ्यास एक बार रोज, परसों भी कर लेना, यहां ज्यादा कर सकते हैं, घरों में एक बार सवेरे या शाम को। पसंद है? करेंगे, हो जाएगा ना, क्लियर है ना। मैं तो अभी फरिश्ता बनी नहीं, कैसे करूं, वो तो बनेंगे भी नहीं। जो ये सोचेंगे मैं तो बनी नहीं, वो कभी बनेंगे ही नहीं। इस राज को समझ लें, स्वमान की यही इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने जब कहा था, दो बातें कही, मैं उसको ही सुनाकर ये बात कहता हूं आपको। तुम सोचते हो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, पर सोचो ये, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इसको कहते हैं स्वमान, वो है पुरुषार्थ, कभी नहीं बनेंगे। मैं कह दूं सब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, खेल नहीं है। जो ये स्वीकार करेंगे मैं संपूर्ण पवित्र, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, वो परम पवित्र बन जाएंगे, इजी हो जाएगा। दूसरी बात कही थी, मुझे बाप समान बनना है तो मंजिल बहुत लंबी है, 100 साल लगेंगे, लेकिन विचार ये करो, इसको स्वमान कहते हैं, मैं बाप समान हूं। देखो, मैं बड़ा हूं ना, बाप समान, तो मेरे विचार कैसे हो, मेरी दृष्टि कैसी हो, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरे ऊंचे मान विचार, मेरा भविष्य का नशा कैसा हो, बाप समान हो ना मैं उसके जैसा हूं। ऐसे ही मैं फरिश्ता हूं, बस बनते जाएंगे। क्योंकि जिस चीज को हम बहुत गहराई से स्वीकार कर लेते हैं वो हमारा स्वरूप बनता जाता है। अच्छी तरह जान ले सभी, सुना सभी ने ध्यान से, जिस बात को हम गहराई से स्वीकार कर लेते हैं हमारा ब्रेन ये वैसा ही अपने को सेट कर देता है, वैसा ही काम करने लगता है। सुन लिया सभी ने, फिर बताऊंगा, अभी सुना नहीं है, ध्यान दो, बहुत गहरी बात है ये। जो विचार हम सच्चे दिल से करते हैं, मैं बोल रहा हूं सच्चे, मैं महान आत्मा हूं, ये नहीं कि मैंने कहा या बाबा ने कहा तो चलो हम भी कह देते हैं मैं महान आत्मा हूं, नहीं, ये फीलिंग सहित निकल जाए सचमुच मैं बहुत महान हूं, इस जन्म में भगवान मिल गए, ब्रेन उसी तरह सेटिंग करेगा, महानताएं आने लगेंगी। क्लियर है भाइयों को? इसलिए वही विचार करेंगे जो हम बनना चाहते हैं, इसको कहते हैं स्वमान। तो तीन अभ्यास हुए रोज करने हैं भट्टी का आनंद लेने के लिए, जो जितना ज्यादा करेंगे 50 बार कर जाएं तो बहुत सुंदर, 50 बार माना हर घंटे में कितनी बार, 3-4 बार बस, वैसे 50 बार कहेंगे लगेगा इतना, घंटे में 3-4 बार, यहां बैठे बैठे क्लास में, खाने पर गए तब कर लिया, पानी पिया तब कर लिया, रूम में गए तब कर लिया, विश्राम से पहले कर लिया, एक संकल्प से प्लानिंग कर लो, अपनी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, तो ये पुरुषार्थ सहज हो जाएंगे। एक प्लानिंग की जरूरत होती है और दूसरी जरूरत होती है धुन लगाने की, धुन लगा देना है। स्वमान मधुवन में अमृत वेले का रोज आनंद लेने के लिए, बाबा का ये महावाक्य याद करना, सवेरे उठते ही स्वमानों की माला सिमरण करो, तो सवेरे उठते ही संकल्प इधर उधर न चला जाए, बहुत अटेंशन की जरूरत है। पहला संकल्प इधर उधर हो गया फिर दूसरा वैसा ही आएगा, तीसरा आएगा, फिर लंबी लाइन लग जाएगी, उसे कंट्रोल करना कठिन भी हो सकता है, योग में बैठेंगे वो चलेगा। उठ से ही शुरू कर दो, मैं महान आत्मा हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं तो सुदर्शन चक्रधारी हूं, विजयी रतन हूं, कितना भाग्यवान हूं, भगवान के घर आ गई हूं, शुरू कर दो। तो मन को काम देंगे तो मन बिना मतलब भागेगा नहीं, नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं, फिर रिपीट कर देता हूं, बहुत नहीं सुना, मन को काम देंगे तो मन बिना मतलब भागेगा नहीं, हम मन को काम नहीं देते तो वो अपना काम खुद ढूंढ लेता है कि मेरे पास बहुत काम है, तुमने क्या समझा, हजारों काम है, इधर भागूं उधर भागूं, है या नहीं? तो सभी सवेरे उठते स्वमान। दूसरे बाबा के शब्द 23 के बारे में आपको वो सुन के आनंद आएगा, सवेरे समाधा स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, यह स्वमानों से सज धजना। अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी भी निखरती जाएगी, चेहरा बदलता जाएगा, सब चेंज होता जाएगा, तो स्वमानों को विशेष महत्व देना है सबको। बोलो बहने आगे की बताएंगी, आपका प्रिय स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिमान। वाह। और पीछे वाली माताओं का? अब वो सोच रहे हम नया बताएं पुराने बता दें। है मैं शिव की शक्ति हूँ, पॉइंट स्वरूप हूँ, कंबाइंड बाबा से। बहुत अच्छा। इसमें ही बाबा की बात सुना दूं आज, या वरदान में कहाँ सुना, आज ही था शायद। वरदाता बाप को साथ रखो तो वरदानों से झोले, आज था स्लोगन था। सुंदर बात है, सिंपल। बाबा तो हमारे साथ रहेगा जब हम साथ रखेंगे, लेकिन जिस संकल्प से साथ रखेंगे उसी तरह का कार्य हो जाएगा। इस स्लोगन से ये बात क्लियर है। बाबा साथ है तो साथ है, लेकिन वरदाता बाबा साथ है तो वरदानों से झोली भर जाएगी। सर्वशक्तिवान साथ है तो शक्तियां बढ़ जाएंगी। सुप्रीम सर्जन साथ है तो बीमारियां भाग जाएंगी। होगा होगा, लेकिन इसका नशा हो जाए, ऐसे ही ढीला ढाला याद रहे, उससे काम नहीं चलेगा। बाबा तो साथ है, चिंता भी हो रही लेकिन बाबा तो साथ है। डबल भी तो काम होता है ना, डबल काम होता है। डर भी रहे हैं पर सर्वशक्तिवान साथ है, मैं शिव शक्ति हूँ, डरूंगी नहीं, डर भी रहे हैं, डबल माइंड हो जाता है। इसको खत्म करना है। ये सबका होता है, ये नहीं आपका ही होता है, मेरा भी हो जाता है। तो सभी आप क्यों वहां से मेरा हो जाता है, इसमें भी मैं आपसे अलग थोड़ा ही हूं। सबको वही होता है, कोई पार करके आ गया है, कोई कर रहे हैं, नहीं तो अंत में करना ही पड़ेगा, फिर कष्ट होगा। इसलिए अंत से पहले ही सब कुछ पार हो जाए। देखो मुझे एक संकल्प रहा करता था, मधुबन में रहे बहुत साल, 30 साल के लगभग, कच्चा पानी पीते थे, पेट की बीमारियां सबको, तो कुछ ना कुछ होता रहता था। दवाई थी नहीं, डॉक्टर थे नहीं, बाबा कह देता था मुरलियों में योग बल से अपने को ठीक करना है। तो कई हमारे साथी मुझे कहा करे बड़े बीमार रहते हो, छोटी मोटी पेट ठीक नहीं, कहीं दर्द हो गया पैरों में, ठंड बहुत होती थी पैरों में दर्द हो जाता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी बीमारियों के कर्म भोग समय से पहले ही पूरा कर लूंगा, और जब समय आएगा विशाल सेवाओं का तब मैं सबकी सेवाओं के लिए तैयार रहूंगा। तो ये अनुभव हो गए, बहुत अच्छे। तो जिस तरह हम बाबा को साथ रखेंगे उसी तरह की प्राप्तियां होती रहेंगी। शांति का सागर मेरे साथ है, शांति की अनुभूति। पवित्रता के सागर से मैं कंबाइंड हूं तो पवित्रता में वृद्धि। मैं दुख हरता सुख करता, मास्टर दुख हरता सुख करता, और बाबा दुख हरता सुख करता मेरे साथ है तो दुख आएंगे नहीं, सुख ही सुख रहेगा। तो इस राज को समझते हुए हम बाबा को उसी रूप से साथ रखें। साथ हमें उसे पकड़ के नहीं रखना है, कैसे रहेगा वो साथ? स्मृति से, हमारा स्मृति में लाना और उसका साथ होना। कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, बाबा साथ है कुछ पता तो चलता नहीं है या नहीं है, बड़ी गहरी बात। स्मृति जिसको है उसे साथ का अनुभव होगा, जिसको स्मृति नहीं है भले साथ भी हो तो भी साथ का अनुभव नहीं होगा। तो हम अपने स्वमानों को बढ़ाएंगे, स्वमान बढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरह, सबको बढ़ाना है। पहला स्वमान जिसकी हमने चर्चा की, मैं दो चार स्वमानों की बात आपके सामने कर देता हूं। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, हैं सभी हैं, इसे स्वीकार कराएं अपने को। पहली चीज होती है स्वीकार कर लेना, सचमुच हम महान हैं ना, दो युग देव रूप में बिताए हमने, हम महान हैं। बीच में एक बात याद आ गई, इसी से जुड़ी है वैसे तो, मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर्स बड़े एक चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, ब्रेन के जो डॉक्टर है ना, कि ब्रेन में जो खराब मेमोरीज है ना, स्मृतियां, खराब चीजें छपी हुई हैं, मान लो इस जीवन में कोई दुख हो गया था बहुत ज्यादा, एक मास दुखी रहे बहुत, तो वो ब्रेन में छप जाता है ना, तो वैज्ञानिक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि उसको डिलीट किया जा सके। हिप्नोटिज्म से तो ये करते हैं लोग, लेकिन हमारे पास, मैंने उन्हें कहा जिसने मुझे ये बात बताई थी कि बाबा के पास इससे भी बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या है कि हमारे इसी ब्रेन में देवत्व भी है, समझते हैं देवत्व, देव संस्कार, सत्युग त्रेता के संस्कार भी यही हैं छुपे हुए। हम उसको जगा सकते हैं, वो तो केवल डिलीट कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म वाले डिलीट करा देते हैं, डिलीट समझ गए ना, मिटो देते हैं, लेकिन हम तो 5000 साल पहले संस्कारों को जगा सकते हैं। कैसे? स्वमान से, छोटी सी बात। अब बहुत अभ्यास करने लगो, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, देवताओं जैसी पवित्रता जीवन में आने लगेगी। थोड़ा लंबा अभ्यास करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर लेयर बहुत हैं, परत कलयुग की, द्वापर की, उसके नीचे है ना, वो सतयुग का सबसे नीचे दब गया, ऊपर ऊपर कलयुग का आ गया है। तो मैं देव कुल की परम पवित्र आत्मा हूं, ये अगर हम याद करेंगे तो देव कुल के संस्कार जागृत होने लगे। सुनो माता, उसको ना देखो, देव कुल के संस्कार जागृत होने लगे। उसका बेचारी का फोन आ रहा, आप उसका फोन सुनने के चक्कर में, समझ गए, क्लियर हो गई बात। मैं विघ्न विनाशक हूं, कल पहले भी हम विघ्न विनाशक बने थे, वो संस्कार भी अंदर ही हैं, जग जाएंगे हम, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और बहुत सुंदर स्वमान है हमारा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, बहुत महत्व का स्वमान है ये, इस पे लोगों का कम ध्यान रहता है। इसका अर्थ है कल्प पहले भी हमने माया पर विजय प्राप्त की थी, जिसको नशा हो जाए मैं कल्प कल्प का विजय रत्न हूं, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कल्प कल्प मैंने माया को जीता है। अभी कोई गड्ढा है कहीं सड़क में, आप 10 बार वहां से गुजरे हैं, आपने देख लिया आज अंधेरा है, लाइट चली गई, गुजर जाएंगे या गड्ढे में गिरेंगे? गुजर जाएंगे ना, पता है, 10 बार निकले वहां पहुंचते पता है इधर है, इधर को हो जाओ, नेचुरल होगा ना। और हमने माया को कितनी बार जीता है, कितनी बार, थोड़ा सुना तो उसमें से कितनी बार, कितने कल्प बीत गए हैं, अनगिनत। चलो उन अनगिनत में से 1000 ले लेते हैं, 1000 बार हमने माया को जीता है, तो अब जीतना कैसा लगेगा? ये स्मृति के मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, माया पर विजय दिलाना आसान कर देगी। जिसको काम को जीतने में कठिनाई हो रही हो वो इसका अभ्यास करो, जिसे क्रोध नहीं जीता जा रहा है वो इसका अभ्यास करें। कल्प कल्प मैंने इस क्रोध को जीता है, काम महाशत्रु को हर कल्प हराया है, मैं ही विजयी हूँ। तो विजय की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। सेनाओं में भी ये बहुत होता था ना, जब युद्ध होते थे तो जो सेनापति या राजा अपनी सेना में उमंग भर देता था वो विजयी हो जाते थे, और जिस सेना में भय फैला होता था वो हार जाते थे। चाणक्य जब थे ना और सिकंदर ने आक्रमण किया था, एक राजा को तो जीत लिया, सिकंदर ने उसकी सेना में अपने बहुत सारे लोग भेजकर भय फैलवा दिया कि मगध का जो सम्राट है उसके पास 600,000 सेना है, भयानक हथियार हैं, तुम तो 20-25,000 ही हो, खा जाएंगे तुम्हें। सेना का मनोबल गिरता गया, दिनों दिन वो डरते गए, और आखिर सिकंदर को कहा वापिस चलो। भय और आत्मविश्वास, हमें आत्मविश्वास हो, हमने इस माया को कल्प कल्प जीता है। है विश्वास या नहीं बोलो, आज से पक्का कर दो। चाहे किसी भी संस्कार को जीतने की बात हो, चाहे फीलिंग को जीतने की बात हो, चाहे दुखी होने के संस्कार को जीतना हो, चाहे दूसरों का दुख लेने के संस्कार को जीतना हो, है ना ये संस्कार। एक माता को दुख होगा, सखियों के पास चली जाएगी, सारा दुख सुना के वो हल्की होके आएगी, वो चारों दुखी रहेंगे, हाय बेचारी के साथ क्या हुआ। टेंशन ट्रांसफर करने में माताएं बहुत होशियार है, भाइयों को सीखना पड़ेगा अभी। तो कईयों में दुख लेने का संस्कार बहुत भारी होता है। अब विनाश काल में यदि कोई दुख लेता रहेगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा? वो तो एक क्षण भी जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा क्या सुखी नहीं रहेगा। इसलिए दूसरों का दुख लेने का संस्कार भी बहुत खतरनाक है, इस पे भी विजय पानी है। दुख तो संसार में बढ़ता जा रहा है, अब देखो कैसे विजय पानी है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा आप सबका उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा बीमार हो जाए, उससे ज्यादा बीमार कौन हो जाएगी? माताओं ने एक स्वर में बोल दिया। बच्चा बीमार हो जाए तो मां को ज्यादा कष्ट होने लगेगा, क्यों? नजदीक नाता, अपनापन। मैं उस मनोविज्ञान पर आपको ले जा रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, अपनापन। अब विनाश काल में अपनों पर जब कष्ट आएगा तो उसका असर आ जाएगा। अगर दुख लेने का संस्कार होगा, अपने तो बहुत होते हैं ना, कम से कम 100 तो हरेक के साथ होते हैं ना, संबंध जुड़े रहते हैं, बिना संबंधों के भी कहीं हमारा जुड़ाव होता है बहुत गहरा, उनका दुख सारा आता रहेगा। तब हमें क्या नुकसान होगा? हम तो दुखी हो ही जाएंगे, लेकिन हम अपना वो महान कार्य भी नहीं कर सकेंगे जो हमें करना है। कौन सा है वो? सभी के दुख हरने का है या नहीं? उस समय वही आत्माएं बहुत महान होंगी जो सभी के दुख लेने वाली नहीं, दुख दूर करने वाली बन जाएंगी। ले लेंगे तो हम ही दुखी हो जाएंगे, हमें ही भगवान को पुकारना पड़ेगा, मेरा दुख हरो। वो कहेगा मैंने थोड़ा ही दुख दिया, तुमने खुद लिया, अपने खुद हरो, कहेगा ना। तो हम विजयी हैं, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, हर चीज पे जो आपको जीती नहीं जा रही है उसके बारे में सच्चे दिल से संकल्प करो, कल्प कल्प मैंने इसको जीता है। क्षणिकावेश भी आता है, क्षण में मूड ऑफ भी हो जाता है, फीलिंग ज्यादा आती है, ये बुरी बीमारियां है ना। मैंने इन सब पे विजय पाई है हजार बार, अब मैं अनगिनत बार नहीं कह रहा हूं, हजार बार, अनगिनत में तो कुछ होता ही नहीं ना, हजार बार विजय पाई है, हजारों बार विजय पाई है, अब भी मेरी विजय निश्चित हो है। तो क्या होगा, विजय की शक्ति जो हमारे अंदर है वो जागृत हो गई, हमारी विजय हो गई। ऐसी बहुत चीजें हैं, एक जगह एक सेंटर को आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग ऐसी लगी कोई बुझा ना सके, सच्ची घटना है। मैंने वो नीचे से ऊपर गई, छत पर गई, छत भी गर्म होने लगी, कोई इधर से गिरी कोई उधर से कूदी, एक बहन ने, दूसरा जो मकान था उसके बीच में 8 फुट की गली थी, इधर इसकी छत और छत के ऊपर भी दीवार होती है ना, उधर उनकी छत, उस भी दीवार, फिर पैसेज। अब इसने देखो आग जलती जा रही है, गर्म होता जा रहा है, वो छोटी सी दीवार पे चढ़ी और इतने जोर से छलांग लगाई कि उनकी दीवार के उधर कूदी 9 फुट। वैसे उसको कहते कूद जाओ, कहती मैं तो गिर जाऊंगी यहां बीच में, कहती या नहीं, कोई भी कहता, भाई भी नहीं कूदने का साहस करेंगे, सोचेंगे गिर गए तो क्या होगा, टांग फंस गई तो क्या होगा, मृत्यु। तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, सोई रहती हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्मृति से वो शक्तियां जग जाती हैं। तो सवेरे उठकर बहुत अच्छे स्वमानों का अभ्यास करना, और जिनको इस सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है वो इस तरह चिंतन कर लेना, 10 स्वमान कोई भी लिखना अपने डायरी में, और एक एक को स्वीकार कराना, एक एक को अपने अंदर भरना, मैं ये हूं, मैं वही हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। हैं या नहीं, भाइयों की भी हो रही है आजकल, हनुमान की बहुत पूजा, भले ही पूछ है आपको नहीं है पर है तो सही ना, देवियों की कितनी पूजा है, कौन है वो, हाथ उठाना कौन कौन आई है यहाँ, थोड़ी आई है, बाकी उधर ही रह गई मंदिरों में। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अभी चिंतन करना इस पे, मेरे दर्शनों के लिए कितनी भीड़ लगती है, क्या अब भी मेरे दर्शन ऐसे हैं जिसे देखकर दूसरों की चिंताएं मिट जाएं? दर्शन माना हमारा चेहरा ऐसा है। चिंतन करना, भक्ति में मेरी जड़ मूर्तियों से भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, क्या मेरे में भी वो ताकत है? अब क्या न सोच के, मैं वही तो हूं, तो मेरे में वो ताकत है। देवियों के चित्र कितने भी सुंदर हो, कोई पापी भी आ जाए चित्र निर्मल हो जाएगा ना, तो क्या मुझे देखकर भी दूसरों की अशुद्ध भावनाएं ठीक होती हैं? और अब ऐसे सोचना, मैं इतनी पवित्र हूं जो भी मेरे सामने आएगा उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। यह है स्वमान का चिंतन। और सभी बहनें अपने घरों में जाकर अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास करना, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। और भाई लोग अभ्यास करना, मैं अपने इस घर में एक महान आत्मा पुण्य आत्मा हूं। देखना क्या होता है आपके घरों में, कैसे वाइब्रेशंस बनते हैं आपके घरों में, अनेक समस्याएं लोप हो जाएंगी। जो सबके प्रश्न होते हैं ना, हमारे घरों में ये हो रहा, बच्चे नहीं सुनते हैं, नॉन वेज खा रहे, बच्चे शराब पीने लगे हैं, बहुत कितनी समस्याएं आजकल, आपके वाइब्रेशंस उन सबको समाप्त करेंगे। और वाइब्रेशंस बनते हैं इसी स्थिति से, स्वमान से। तो स्वमान पे बहुत अच्छा चिंतन करना, और भी कई स्वमान बहुत गहरे हैं। मैं जहान की नोर हूं, मैं कल्प वृक्ष की जड़े हूं। कल ही था ना बाबा ने, तुम तने भी हो और तनों से ही तो सब शाखाएं निकलती हैं, यानी सभी धर्म किससे स्थापित हुए हैं, देवी देवता धर्म, फिर जो हिंदू बन गए उनसे ही तो सब निकले। महात्मा बुद्ध हिंदू था या बौद्ध था? बौद्ध धर्म तो था ही नहीं, हिंदू ही था ना। ऐसे सभी शाखाएं हिंदू धर्म की ही रचनाएं हैं। तो मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूं, मेरे द्वारा ही भोजन जाता है, मेरे संकल्पों के वाइब्रेशंस, मेरी स्थिति के वाइब्रेशंस, मेरी प्योरिटी, मेरी शक्तियां पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। चित्र बना लेना, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है, जो हम सोच भी रहे हैं वो सीधा फैल रहा है उसमें, सारे में। एक बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं जो बनाना चाहेंगे। मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का देवता हूं, मेरे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष है और मुझसे फैली हुई गोल्डन किरणें पूरे कल्प वृक्ष में समा रही हैं, जैसे पूरा कल्प वृक्ष ही गोल्डन हो गया है, सतयुगी सुनहरा। इस तरह सभी यहाँ के 3 दिन का भी पूरा आनंद लेंगे, और प्लान बनाकर जाना जिससे आप वहां जाकर इस पट्टी का कुछ अंश भी चालू रख सकें। कोई 5 अच्छी बातें जो सदा आपको जीवन में चलानी है वो लेकर जाना, और खूब एंजॉय करो मधुबन की इस धरनी को। पहली बार ही सबको मौका मिलता है यहाँ रहने का, थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है, डोंट माइंड, वो तो जहाँ प्यार है चाहे जमीन में सोते रहो। मैं तो याद करता हूँ 1000 लोग आते थे, यहीं रहते थे, जो सारे बरंडे हैं उनमें जमीन पे सो जाते थे लोग। हम लोग अपने कमरे खाली कर देते थे, हम कहीं भी सोए हमारे कमरे में 10-10 सो जाते थे, आनंद था ना। जहाँ प्यार है, जहाँ प्राप्ति है, वहाँ ये सब कठिनाई रहती नहीं। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।